अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबके सलाम का जवाब मैंने एक साथ दे दिया है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आई एम श्योर यू ऑल गेयर अप फॉर अ बिट लेंदी क्लास, बट मैं बहुत लेंदी नहीं करूँगी। मुझे मालूम है कि आप सबका भी रोज़ा है और हो सकता है इस टाइम पे आपको किसी को नींद आ रही हो। चलिए, नोटबुक हाथ में लेकर बैठें ताकि आपको जो है वो आसानी से क्लास में कंसंट्रेशन मेंटेन रखना आसान रहे। वैसे भी गोस्ट स्टोरीज तो हम सबकी फेवरेट होती हैं, सो आई एम श्योर कि अगर अब तक कोई सोता हुआ आ भी रहा था तो आज नहीं सोएगा। चलिए शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عِندَ الْمَوْتِ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. ان ڈیپ اسٹڈیز کرتے ہوئے ہم الحمدللہ سورۃ الفلق پر آ چکے، اور سورۃ الفلق کی ہم نے تین آیات مکمل کر لیں. کل ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ آیت نمبر دو اور آیت نمبر تین دیکھی تھی. آیت نمبر دو میں ہم نے عمومی شر سے اللہ کی حفاظت طلب کی تھی، جو ہمیں سکھایا گیا ہے، اور آیت نمبر تین میں اسپیسیفکلی رات کے شر کو مینشن کیا گیا تھا جب وہ پھیل جائے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، جب وہ اندھیرا مکمل پھیل جائے اس کے لیے وقب کا لفظ آتا ہے. میں کنٹینیو کرتی ہوں پچھلے ہی اپنے سیکوینس کو آگے بڑھاتے ہوئے. وقبہ کے میں نے آپ کو مفہوم بتایا تھا کہ اندھیرا جب وہ بالکل ڈارک ہو جائے، تو غاسق اور وقب کو جب اسکالرز اکٹھا کرتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پوری رات میں جتنا بھی شر ہے ہم اس سے اللہ آپ کی حفاظت میں آتے ہیں. صحیح. اچھا، وقبہ کا ایک اور مفہوم جو آج کل کے حساب سے بہت ضروری ہے. کل لاسٹ ایک مفہوم بتایا تھا رات جب پھیل جائے، دوسرا آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی انسین مخلوق اس رات میں موجود ہے اللہ ہم اس کے شر سے آپ کی حفاظت میں آتے ہیں، اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا تھا جو اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے اسکالرز نے مینشن کیا ہے کہ اللہ جو ہمارے اسپریچول اندھیرے ہیں، یعنی جو ہمارے شکوک اور شبہات اور ڈاؤٹس کے یا اسلام کے بارے میں کلیئرٹی نہ ہونے کے اندھیرے ہیں، ہم ان اندھیروں سے بھی اور ان اندھیروں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت میں آتے ہیں. آج کل ایک چیز بہت تیزی سے، آج کل کی نہیں ہے، یہ ارلی سینچریز سے ہی شروع ہو چکا معاملہ، لیکن وہی بات ہے کہ جیسے جیسے دنیا جو ہے وہ بڑی انٹلیکچوئل ہوتی جا رہی ہے، اتنا زیادہ شیطان بھی بہت ہی انٹلیکچوئل پیٹرن سے انسانیت پر حملے کر رہا ہے. اس وقبہ کا ایک اور مفہوم آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو مینشن ایٹ دس پوائنٹ، بیکاز آگے شاید مجھے اتنا زیادہ اس کا موقع نہیں ملے. وقبہ میں یاد رکھیں آج کے دور کے حساب سے، بیکاز اٹس سیریسلی کنیکٹیڈ ود دا انٹیلیجنسیا آف دا اما اینڈ ود دا یوتھ آف دا اما. اس وقبہ میں وہ اندھیرے بھی ہیں جو آج شیطان احادیث کے بارے میں ڈالتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں. اور ایک بہت کامن سوال جو آپ کو، ظاہری بات ہے جو منکر حدیث لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنی آڈینس کے اندر اسی طرح کے جو ہیں وہ شبہات ڈالتے ہیں کہ اگر ایک ہی وقت میں ایک ہی بات اللہ کے رسول نے کہی تو اس کو بیان کرنے والوں نے تین الگ طرح سے کیوں بتایا. اینڈ دس از اے ویری کامن پوائنٹ جو آپ کو اس طرح کی گیدرنگ میں سننے کو ملتا ہے کہ جب ایک ہی جگہ پر ایک بات کہی گئی تو اس میں اتنی ویریشن کیوں آتی ہے جبکہ وہ تینوں حدیث کے طور پر مینشن کی جاتی ہیں. تو یہ کانسٹنٹلی ان اس طرح کی چیزوں کو بیس بنا کر آج شیطان انسانوں کو ایز اے ویہیکل استعمال کرتا ہے، और फिर वो कहता है कि देखो हदीस के अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कुरान तो अपनी जगह फिक्स है और कुरान की हिफाजत तो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे खुद ली है। तो अब इंसान को क्या सोच पर मजबूर कर देता है शैतान कि कुरान तो अल्लाह की हिफाजत में है और हदीस में यकीनन जब अल्लाह ने हिफाजत नहीं ली तो कहीं ऊंच नीच आ गई है। जब भी इसके अंदर जो है वो कहीं ज़ईफ़ होती है और कभी जो है वो किसी जगह पर जो है वो अल्फाज में वेरिएशन होती है, तो सारा फोकस बस कुरान पर रख लो। सारा फोकस जो है वो सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ कुरान पर रखा जाए, इसलिए कि हदीस में रद्दो बदल है। जब आप इस तरह से चीज़ों को सुनते रहते हैं तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि ठीक है मैं कुरान को मानूंगी और हदीस को छोड़ दूंगी। और ये मुसलमान उम्मत में वकबा का काम करता है। दीन में जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन पर डाउट आएगा, याद रखें वहाँ आपके कल्ब के ऊपर, आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अंधेरे आने लग जाएंगे। एक सिंपल सी आपके सामने मैं बात रखूँगी कुरान और हदीस की हिफाजत के हवाले से, और एक बात आपके सामने रखूँगी इंसिडेंट की नरेशंस के हवाले से, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। जहाँ तक बात है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, तो याद रखें कुरान में अल्लाह ताला ने तकरीबन शायद 11 टाइम्स ये बात और ये फ्रेज मेंशन किया है, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल। आप रसूल अल्लाह की इताअत कर ही नहीं सकती अगर उनकी अहादीस के कलेक्शन को महफूज ना रखा जाए। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से एक साइन है कुरान के अंदर कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलेक्शन को, सही कलेक्शन को, एक अच्छी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अहादीस और नरेशंस को महफूज रखा जाएगा, वरना आप और मैं रसूल अल्लाह की इताअत नहीं कर पाते, उनकी इत्तेबा नहीं कर पाते। तो जहाँ कुरान की हिफाजत है उस कुरान ही के अल्फाज में गवाही है कि रसूल अल्लाह की अहादीस की भी हिफाजत है। जब भी आपको उसमें दर्जात तक मिल जाते हैं कि कौन किस दर्जे की है, कौन सही दर्जे की है, कौन हसन दर्जे की है, कौन दईफ़ दर्जे की है, कौन मौदू फैब्रिकेटेड दर्जे की है, तो ये कॉन्स्टेंटली आपके और मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉलिड प्रूफ मौजूद है। शैतान के दिए गए वक्फ का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के रसूल की इताअत के लिए आपकी सही कलेक्शन की हिफाजत खुद अल्लाह ने फरमाई है। जहाँ तक बात है कि एक ही इंसिडेंट को मुख्तलिफ नरेशंस में क्यों मुख्तलिफ तरह से डिस्क्राइब किया गया, एक इसकी सिंपल सी बात, एक इसकी सिंपल सी मिसाल मैं आपके सामने रखती हूँ। देखिए एक महफिल में 10 लोग हैं, वहाँ पर सहाबा आकर, या चले सहाबा छोड़ दें, एक महफिल में 10 लोग हैं और वहाँ पर उनका कोई उस्ताद आता है। अब उसके बाद वो 10 लोग किसी और गैदरिंग में जाते हैं और उन 10 लोगों से कहा जाता है कि अब आप बताएं ज़रा आपने उस महफिल में उस्ताद को कैसा पाया। तो एक स्टूडेंट कहता है कि उस्ताद आए और उन्होंने हम सबको बैठकर सलाम किया। उसी गैदरिंग में एक और स्टूडेंट है जो कहता है उस्ताद आए, उन्होंने हम सबको मुस्कुरा कर देखा, उन्होंने पानी पिया और उसके बाद उन्होंने हम सबको सलाम किया। तो अल्फाज में जुमले थोड़े से आगे पीछे हुए, बट डेफिनेटली हर एक ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बात को बयान किया। बात का जिस्ट निकाला जाएगा तो बात वही होगी, लेकिन किसी में आपको ज़्यादा डिटेल मिलेगी, किसी में आपको कम डिटेल मिलेगी, अगेन डिपेंडिंग अपॉन किसने किस तरह से उस चीज़ को जो है वो अपने सामने प्रेजेंट करने के लिए रखा। ठीक है, तो वक्बा के हवाले से प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखें कि इस्लाम की हिफाजत में, कुरान की हिफाजत में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस की हिफाजत की गई है। और ये बात मैं अपने Q&A सेशन में पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत सी ऐसी अहादीस भी मौजूद हैं, कुछ ऐसी अहादीस बॉर्डर लाइन पर मौजूद हैं जो कुछ नरेटर्स के थ्रू सही बन जाती हैं या हसन बन जाती हैं और कुछ चेन ऑफ नरेटर से वो दईफ बन जाती हैं। इट्स द होल साइंस जिसको अवाम बैठ कर डिस्कशन ना करे तो बेहतर है। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप किसी उस्ताद के साथ अहादीस का इल्म हासिल कीजिए ताकि आपको कभी भी शकूक और शुभात ना आए। और जब किसी उस्ताद के पास जाने लगें इल्म हासिल करने के लिए तो दुआ मांग कर जाएँ कि अल्लाह मुझे उस जगह लेकर जाइए जहाँ पर हक़ बयान किया जाता है। वरना मैंने आपको कल एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जुमला बताया था कि आपने कहा था तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदाई लैलुहा कनहारिया। मैं तुमको एक ऐसे वाज़े रोशन रास्ते पर, वाज़े रोशन दीन पर छोड़कर जा रहा हूँ कि उसका दिन और रात एक ही जैसा रोशन हो सकता है। द पॉइंट इज कल्ब में ईमान की रोशनी आ जाए। तो जिस्मानी तौर पर आपको अवेयरनेस आएगी, इंटेलेक्चुअली आपको अवेयरनेस आएगी, और आपको रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली आपके अंदर ईमान का स्टैमिना जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो ये एक रात के स्पेसिफिक शर को जो सूरतुल फलक में मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब के थ्रू बताया गया है, उसमें एक एक्सप्लेनेशन हमारे आज के हालात के हिसाब से वक़बा की बनती थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब हम अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं और आयत नंबर 4 सूरतुल फलक को पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। आयत नंबर 4 में दूसरा स्पेसिफिक शर बयान किया गया है। आपको कल बताया था कि सूरतुल फलक में आयत नंबर 2 में ऑलरेडी उमूमी शर से हमने अल्लाह की हिफाजत तलब कर ली। अल्लाह जो भी आपकी मखलूक में शर है, मैं सब से आपकी हिफाजत में आती हूँ। लेकिन उसके बाद स्कॉलर्स, क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह ने 3 तरह के शर अलग डिफाइन किए। क्यों? इसलिए कि ये ख़ास वो एंगल हैं जिससे इंसान को अपनी हिफाजत करनी चाहिए और फिर अल्लाह के साथ अपना मामला एक मजबूत बनाकर रखना चाहिए, वरना ये शर इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आप में से यहाँ एक क्लैरिटी उन लोगों को दे दूं जिनके मेरे पास कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं अरबिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने पहले ही अपना पोस्टर आप लोगों को दे दिया था, मैं इन डेप्थ स्टडी करा रही हूँ, और अगर आप मेरी सारी पिछली इन डेप्थ स्टडीज़ जितनी मैंने पब्लिक की हैं अगर आप उनको देखेंगी और सुनेंगी, इन डेप्थ स्टडी अरबिक लैंग्वेज के बग़ैर, इल्मुल लुगा और इल्मुल बलागा, इसके बग़ैर इन डेप्थ स्टडी हो नहीं सकती है। तो प्लीज़ ये तो मैं कराऊंगी और यही मेरा पैटर्न है। मैं माजरत चाहती हूँ अगर आप में से कुछ लोगों को मुश्किल हो रही है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं अरबी ज़ुबान की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल ना करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर तरह के लोग मुझे सुन रहे हैं। और मेरी क्लासेस ना एज ब्रैकेट के साथ जो हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं, और मेरी क्लासेस ना ही किसी स्ट्रेटा के लिए स्पेसिफिक हैं। प्लीज़, हाँ मिसालें देते मैं, ज़ाहरी बात है जो मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड होगा मैं वही मिसालें दे सकती हूँ, उसमें अगर किसी की दिल आज़ारी होती है तो मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि उसके बारे में भी कुछ लोगों ने दरख्वास्त की थी। मगर मैं माजरत चाहती हूँ अगर किसी को लगता है कि मैं सिर्फ स्पेसिफिक तरह की मिसाल दे रही होती हूँ, तो ज़ाहिर है जो इंसान का जहाँ उठना बैठना होता है, जो इंसान के अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके होते हैं, आप उसी की मिसाल ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आई एम श्योर आप में से जिनका सवाल था उनको समझ आ गई होगी। अब एक स्पेसिफिक शब्द जो आयत नंबर 4 में मेंशन किया गया है वो है व मिन शर्रिन नफ्फाथाती फिल उकद। आप देख रहे हैं कि आयत 3 जहाँ मुकम्मल हो रही है वहाँ पर भी आयत के दायरे के ऊपर छोटा सा लाम अलिफ ला लिखा हुआ है, जिसको आपका अब जहाँ भी कुरान में आएगा आपको मैंने इसका मतलब बता दिया। अभी जुमला कंटिन्यू है, जुमला विद इन जुमला चल रहा है, अभी कॉन्टेक्स्ट कंटिन्यू है, अभी पीछे से रब्त पूरा आउहू के साथ कनेक्टेड है। तो वा मिन शर्री, और हम किस शर से अल्लाह की हिफाजत में आ रहे हैं? अन नफ़ाताती, फूंके मारने वालियों के शर से, फिल उकदी, जब वो नॉट्स में फूंके मारें। एंड फ्रॉम द ईविल ऑफ दोज हु प्रैक्टिस विचक्राफ्ट व्हेन दे ब्लो इन द नॉट्स। और हम अल्लाह की हिफाजत में आते हैं नॉट्स में, गिरह में फूंके मारने वालियों के शर से। अब ये स्पेसिफिक वो आयत है जो कि सहर से, जादू से, मैजिक से कनेक्टेड है। मैं आपके सामने इस लफ्ज़ की 3 एक्सप्लेनेशंस या वमिन शर नफ्फासात की 3 एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगी। इससे पहले कि मैं उन 3 एक्सप्लेनेशंस पर आपको लेकर जाऊं, जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है वो ख़ास तौर पर क्योंकि हम सब ख़वातीन हैं और मुझे ख़वातीन ही ज़्यादा सुनती हैं, तो हम सब इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह रिलेट कर सकते हैं कि जब हम इस आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं वामिन शर नफ़ाती, और हम पढ़ते हैं और नॉट्स में फूंके मारने वालियों के शर से, हाँ, तो फौरन ख्याल क्या आता है कि ओहो कुरान ने औरतों को क्यों नेगेटिवली इस्तेमाल किया है? कुरान ने जो है वो औरतों के लिए इस मैजिक एक्ट को स्पेसिफिक क्यों कर दिया? तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि अन्नफसात यहाँ सिर्फ औरतों की बात नहीं है. इफ आई एम श्योर यू विल स्टार्ट लविंग कुरान इंशाल्लाह मोर विद इन दीज 25 डेज. अभी भी आपको अल्लाह के कलाम से मोहब्बत है, ये क्लासेस ज्वाइन करने से पहले भी आपको अल्लाह के कलाम से मोहब्बत थी और आगे भी रहेगी इंशाल्लाह. बट आई एम 100% श्योर इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हुए कि इन 25 डेज के बाद आपको कुरान से और मोहब्बत हो जाएगी, आपको रसूलुल्लाह से और मोहब्बत हो जाएगी, आपको अल्लाह से और मोहब्बत हो जाएगी. मैं ये क्यों कह रही हूँ, अन्नफसात सिर्फ औरतों के लिए नहीं आया. ऑल्दो तर्जुमे में फूके मारने वालियाँ आता है, दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ द ट्रांसलेशन. कभी भी आपको ट्रांसलेशन में आयत का फुल एसेंस नहीं मिल सकता. आयत का फुल एसेंस किसी बेहतरीन से बेहतरीन तावील से नहीं मिल सकता. आयत का फुल एसेंस किसी बेहतरीन से बेहतरीन तफसीर से नहीं मिल सकता. आयत का बेहतरीन एसेंस किसी बेहतरीन से बेहतरीन इनडेप्थ स्टडी से नहीं मिल सकता. किसी भी रब की कलाम में आयत का असल मफहूम क्या है ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ही जानते हैं. और अल्लाह करे कि हमें जन्नत में ये मौका मिले कि हम अल्लाह से कहें कि अल्लाह आप अपने कलाम की एक एक आयत को असल में आपने इसके पीछे क्या हिकमतें छुपाई थीं और कितने लेसन्स रखे थे और आप असल में अपने बंदों को क्या समझाना चाह रहे थे. अल्लाह जन्नत में हमें वो एक्सप्लेनेशन सुनना नसीब फरमाए. आई वुड रियली लव टू लिसन दैट. अल्लाह हमें हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए और अल्लाह हमें ये गैदरिंग जिसमें अल्लाह ख़ुद अपने कलाम को एक्सप्लेन करे. आई डोंट नो कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, आई एम श्योर दिस विल नॉट बी खिलाफ अदब, बट बहुत दिल चाहता है कि जन्नत में अल्लाह ख़ुद बताएं कि मेरा इस आयत से क्या मतलब था, इसमें कितनी हिकमतें पोशीदा थीं. तो आपको कुरान की खूबसूरती नज़र आती है और कुरान 1450 साल पुराना होने के बावजूद आज की इस मिथ को दूर करता है जो कि बहुत सी मिथ्स हमारी इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी हैं. कुरान अनवेल करता है उनको और आपको इससे बेहतरीन हिकमत एक लफ्ज़ में आप इसको समझ जाएं कहीं और नहीं मिल सकती. ये मिथ बनी है अर्ली जिसको आप कहती हैं क्रिश्चियन टाइम्स में, जो यूरोप में यूरोपियन रेनेसांस के अराउंड शुरू हुआ है और आज तक कायम है. आप अपने कार्टून्स देख लें, आप डिज्नी वर्ल्ड पूरा देख लें, आप फेमस चिल्ड्रन गोस्ट स्टोरीज देख लें, इवन द मोस्ट फेमस एंड द पॉपुलर वन द हैरी पॉटर, आप इन सबको देख लें. इन सब में अक्सर जो आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, दो अल्फाज मिलते हैं, फॉर ऑल द मैजिक वर्ल्ड, फॉर ऑल द ब्लैक आर्ट वर्ल्ड, जिसमें आपको मिलता है विच फॉर द फीमेल एंड विजर्ड फॉर द मेल. अगर बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो उनको मज़ा आ रहा होगा और वो रिलेट भी कर रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ. और आप में से जिन खवातीन ने हैरी पॉटर की किताब पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं, तो आपको भी पता चल रहा होगा कि दे एक्चुअली यूज़ विच फॉर द मेल एंड विजिट फॉर द विच फॉर द फीमेल एंड विजिट फॉर द मेल. जबकि रियलिटी क्या है, द ग्राउंड रियलिटी एंड द सॉलिड रियलिटी जो आज भी आपको हिस्ट्री की किताबों में मिल जाएगी, इवन एग्जिस्टिंग टाइम्स में भी आज भी आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी. सैटनिक वर्ल्ड के अंदर जो शैतानी दुनिया है, जो लूसीफर की दुनिया है, जहाँ लूसीफर वर्शिपर्स हैं, उसमें मेजॉरिटी मैन, मेजॉरिटी आदमी हैं जो खुद को मेल विचेस कहते हैं. आप अगर आप में से किसी को हिस्ट्री लाइन किताबों की पढ़ने का शौक है और आप डर्टी डेटा निकाल दें, डर्टी लिटरेचर, उसके अलावा आप जो भी आसपास की इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ने का शौक रखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इन दिस सैटेनिक वर्ल्ड, इन दिस लूसीफर वर्ल्ड, विच क्या लव्स जो है वो मेल अपने साथ भी इस्तेमाल करते हैं और आज भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. ये आपको इस वक्त बताने का मकसद क्या था, आपके सामने ये पॉइंट इस वक्त रखने का मकसद क्या है, ताकि औरत होते हुए जब मैं अन्नफसात का तर्जुमा पढ़ूं फूके मारने वालियों के शर से, तो मेरे अंदर बिला वजह गुस्सा नहीं आए कि ओहो अल्लाह ने औरतों को डिग्रेड कर दिया है. गुस्सा आने की ज़रूरत नहीं है. अल्लाह ने नहीं कहा कि ये विचक्राफ्ट करने वाली सिर्फ औरतें हैं. कुरान ने एक जनरल टर्म इस्तेमाल की है. अच्छा, इसका तर्जुमा किया क्यों जाता है फूके मारने वालियों के शर से? बिकॉज ये अनफताती अरबिक लैंग्वेज के अंदर ये मोनस इसम है, फेमिनिन नाउन है, सही है। तो अब आपको और मुझे इसको समझना है कि क्यों अल्लाह ताला ने यहाँ फेमिनिन नाउन इस्तेमाल किया है, इसलिए कि मोमिना औरत, मुसलमान औरत कभी भी कुरान से और अल्लाह के कलाम से बदगुमान हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको वजह बताती हूँ, एक्सप्लेनेशन नंबर वन ऑफ अन्नफा साथ, कि ये मोनस इसम क्यों आया है, फेमिनिन नाउन यहाँ पर क्यों आया है। नंबर वन एक्सप्लेनेशन इसकी लफ्ज़ की ये है कि देखें, स्कॉलर्स के मुताबिक और क्लासिकल अर्ली स्कॉलर्स के मुताबिक वो कहते हैं अन्नफसाती जमा है, प्लोरल है, इसलिए कि आप तर्जुमा क्या करती हैं, फूके मारने वालियों, वाली नहीं कहा, दिस इज शी इज और द वन विच इज मोर देन वन, फूके मारने वालियों के शर्त से, तो ये जमा है और ये एडजेक्टिव है, सिफा के तौर पर आया, जिसको उर्दू में सिफत कहते हैं। तो अन्नफसात सिफत के तौर पर आया, किसकी सिफत के तौर पर आया है, बिल्कुल जैसे हमने वा मिन शर्री से पहले, वाव से पहले आऊधु को महजूफ यहाँ पर छुपा हुआ अंडरस्टूड समझा है, इसी तरह से शर्री के बाद यहाँ पर स्कॉलर्स के मुताबिक एक इसम महजूफ है, छुपा हुआ है, अंडरस्टूड है, जिस इसम की ये अन्नफसात सिफत बन रही है। गॉट माई पॉइंट? अन्नफसात सिफत है और स्कॉलर्स के मुताबिक इस अन्नफसात से पहले एक लफ्ज़ यहाँ पर महजूफ है, और जो लफ्ज़ महजूफ है स्कॉलर्स कहते हैं वो है यहाँ पर, जिस लफ्ज़ को आपने इंशाल्लाह याद रखना है, वो कहते हैं यहाँ पर नुफूस, नून पर पेश फाउ फा पर पेश वाओ और सीन, नुफूस, अन नुफूस वो कहते हैं यहाँ पर छुपा हुआ है। नुफूस किसकी जमा है? नफ्स की। तो नफ्स आता है मर्द और औरत दोनों के लिए, नफ्स आता है किसी भी ऐसी हस्ती के लिए जो कि सांस ले रही है, नफ्स, इस नफ्स की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ये होती है, ऐसी कोई भी हस्ती, ऐसी कोई भी मखलूक जो कि सांस ले रही है उसके लिए नफ्स आता है, ठीक है। बट मेनली डेफिनेटली विद द कीपिंग द कॉन्टेक्स्ट इन माइंड यहाँ पर इंसानों की बात की गई है। तो एक लफ्ज़ शर के बाद छुपा हुआ है, महजूफ है, महजूफ में मीम हा जो नरमी से बोले जाने वाला दाल होता है, दाल वाओ फा महजूफ, वो कौन सा लफ्ज़ है जो छुपा हुआ है? अन्नुफूस, वमिन शर्र नुफूसुन नफ्फसात। तो अब आपको पता चल जाएगा कि इसम नुफूस छुपा हुआ है और उसकी सिफत नफ्फसात आई है। नफ्फसात मोनस इसलिए आया है बिकॉज नुफूस मोनस है। अब जिनको अरबी ग्रामर आती है उनको पीछे की पूरी स्टोरी बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आई डोंट वॉन्ट टू मेक दिस अ ग्रामर क्लास, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कि नफ्स का लफ्ज़ मर्द और औरत दोनों के लिए आता है, किसी भी मखलूक के लिए आ सकता है जो सांस लेती है, और अल्लाह ने यहाँ पर फीमेल औरतों की सिर्फ बात नहीं की, नफ्स मर्द भी है और नफ्स औरत भी है। नफ्स अरबी जुबान में मोनस लफ्ज़ है, तो लफ्ज़ जब मोनस होता है तो उसकी सिफत भी मोनस आती है, इसलिए यहाँ पर ये अन्नफसाद जो है ये आया है। ये इसकी एक क्लैरिफिकेशन है जो हम जैसी खवातीन के दिलों को सुकून दे देती है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा कलाम हमें अपलिफ्ट करता है, हमारे रब का कलाम